ओशो अमृत वाणी प्रवचन माला मरो हे जोगी मरो प्रवचन संख्या 38।
प्यारे मित्रों, आप अपने मित्रों को बताएं कि यदि वे भी अपने व्हाट्सएप पर ओशो के प्रवचन चाहते हैं तो इस नंबर पर ओशो लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें 8295435000।
ऐसा ही एल्दोस हक्सले ने लिखा कि बुद्ध ने जो ध्यान की प्रक्रिया की वो बैलगाड़ी जैसी थी। 6 साल लगे। महावीर की तो और भी पुरानी रही होगी बैलगाड़ी, 12 साल लगे। अब एलएसडी हमें मिल गया है, अब ये जेट युग की चीज है। अब इसका तो जरा सी मात्रा आंख से भी दिखाई नहीं पड़े, ऐसी जरा सी मात्रा ले लेने से समाधि लग जाती। तब हमने खोज लिया राज, और उसने लिखा कि जल्दी ही हम उस परम औषधि को खोज लेंगे जिसकी तलाश सदा से चलती रही। ऋग्वेद के स्मरण में उसने उस परम औषधि को सोमा का नाम दिया। इस सदी के पूरे होते होते उसकी आशा थी कि सोमा की खोज हो जाएगी, वैज्ञानिक इंजेक्शन निकाल लेंगे जिसको जब चाहिए समाधि तब समाधि ले ले। पर ऐसी समाधि 2 कौड़ी की है। एल्दोस हक्सले कितना ही बड़ा विचारक रहा हो, समाधि और ध्यान के जगत का उसे कोई अनुभव नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। शब्दों का तालमेल बैठ गया और उसने सोचा कि हो गई बात। शब्दों का तालमेल तो स्वप्न और यथार्थ में भी कभी कभी बैठ जाता है। कभी तो तुम स्वप्न में भी ऐसे सौंदर्य का अनुभव कर लेते हो कि जाग के सारा जगत फीका लगे, तो भी तुम ये तो नहीं कहते कि वह सत्य था। तुम जानते हो कि सपना आखिर सपना था। रासायनिक द्रव्यों से तो शरीर की भीतर की रासायनिक प्रक्रियाएं बदली जा सकती, लेकिन चेतना का आरोहण नहीं होता। चेतना पर तो रासायनिक द्रव्यों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चेतना तो वही है जो रासायनिक द्रव्यों के पार है। उसे पाने के लिए तो कुछ और करना होगा। भांगी भकंत ज्ञान ध्यान खोबंत, और जो लोग रासायनिक द्रव्यों में पड़ गए हैं वो ध्यान खो देते हैं, ज्ञान खो देते हैं, और इस मजे में रहते हैं कि मिल गए पा लिया। इस देश में हजारों साधु हैं, दम मारो दम। और ये कोई नई बात नहीं है इस देश में। इस देश में साधु और गांजा ना पिए तो साधु ही क्या, साधुकड़ा। साधु तो वही जो दिल भर के पिए, असली साधु तो वही कि पीता ही रहे। 90% साधु इस देश के गांजा भांग अफीम और न मालूम क्या क्या रासायनिक द्रव्यों में उलझे रहे, और तुम इन्हें साधु की तरह पूजते भी रहे हो। पश्चिम में तो ये रोग नया है, पूरब में तो ये रोग बड़ा प्राचीन है। पश्चिम को तो लोग गालियां देते, अगर गोवा में जाके हिप्पी आके और मारिजुआना और एलएसडी लेते हैं तो सारी भारतीय संस्कृति को धक्का लगता है। और तुम्हारे साधु सन्यासी 5000 साल से यही कर रहे हैं और तुम्हारी संस्कृति को धक्का नहीं लगा। तुम्हारे साधुओं के अखाड़ों में हो क्या रहा है? मगर गांजा भांग पी के राम की धुन लगा दी उन्होंने, बस चित्त प्रसन्न हो गया। तुम भी प्रसन्न हुए कि देखो कैसे राम की धुन लगी। गांजे के नशे में बकवास चल रही, तुम समझ रहे हो राम की धुन लगी। राम राम जपने की आदत बन गई तो जब गांजा पी लेते तब भी राम राम जपने की आदत जारी रहती है, और जोर जोर से जपने लगते और उछलने कूदने लगते। मगर यह कोई समाधि की अवस्थाएं तो नहीं है। समाधि की अवस्था तो बड़ी शांति की अवस्था है, उसमें नृत्य भी होता है तो उस नृत्य में भी एक समता होती, एक संतुलन होता है, उसमें गीत भी पैदा होते हैं तो समस्वर होते, संवेद होते, उसके गीत भी ध्यान आपूरित होते, वह नृत्य भी कोई तांडव नृत्य नहीं होता। मगर लोगों ने तो अपने हिसाब से इंतजाम कर लिए, खुद ही नहीं पीते, वो तो शिवजी तक को पिला रहे हैं। भंगेड़ी गंजेड़ी उनकी जमाते, वो सोचते हैं कि शिवजी से चल रही है ये परंपरा, कोई नई थोड़ी, इसलिए बम भोले भोले का स्मरण करते फिर दम लगती। धर्म के नाम पर चलता रहा तो किसी को कोई अड़चन नहीं, तो हमने बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। हम ऐसे अंधे हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी चलता हो तो हम स्वीकार कर लेते, बस धर्म की आड़ होनी चाहिए, धर्म की आड़ हो तो सब ठीक है। तुम्हारे देश के 99% साधु साधु नहीं है, साधु कहे जाने के हकदार भी नहीं, मगर उनकी पूजा चल रही, तुम उनके पैरों पर गिर रहे हो। तुम कभी कुंभ के मेले में अपने साधुओं की जमातें तो जाकर देखो, तुम्हें देश भर के और सब दादा इत्यादि छोटे मालूम पड़ेंगे। इन्हीं की जमात इकट्ठी हो जाती तुम इसको साधुओं की जमात कहते हो। चित्रकूट के घाट पे भाई लुच्चन की भीड़, मगर धर्म की आड़ तो तुम कहते हो संतन की भीड़ लगी। आंखें खोलो, गोरख वही कह रहे हैं, नहीं तो फिर आखिरी घड़ी में बहुत पछताओगे। जम दरबारी ते प्राणी रोवंत, धोखे आसानी से हो जाते, धोखे सस्ते होते। नागहा सोर हुआ, लो सबे तार गुलामी की सहर आ पहुंची, उंगलियां जाग उठी, बरबत और ताऊस ने अंगड़ाई ली और मुतरब की हथेली से सुहाएं फूटी, खिल गए साज में नगमों के महकते हुए फूल, लोग चिल्लाए कि फरियाद के दिन बीत गए, राहजन हार गए, राहरव जीत गए, काफिले दूर थे मंजिल से बहुत दूर, मगर खुद फरेबी की घनी छांव में दम लेने लगे, चुन लिया राह के रोड़ों को, खजफ रेजों को, और समझ बैठे कि बस लालो जवाहर है यही। राहजन हंसने लगे छुप के कमी गाहों में, हमने आजूर्दगी शौक को मंजिल जाना, अपनी ही गर्द सरे राह को महमिल जाना, अब जिधर देखो उधर मौत मंडराती, अब जिधर देखो उधर मौत ही मंडराती। धोखा खाना बड़ा आसान है, जरा सी बात को तूल दे देना बहुत आसान है, झूठ को सच के आवरण पहना देना बहुत आसान है। काफले दूर थे मंजिल से बहुत दूर, मगर खुद फरेबी की घनी छांव में दम लेने लगे। आदमी आत्मवंचक है, खुद फरेबी की घनी छांव में अपने को ही धोखा देने के लिए छांव बना लेता है, अपने ही धोखे में डूब जाता है। चुन लिया राह के रोड़ों को, खजफ रेजों को, कंकर पत्थर बीन लेता रास्ते के किनारे के, और समझ बैठे कि बस लालो जवाहर है यही। राहजन हंसने लगे छुप के कमी गांवों में, हमने आजूद लिए शौक को मंजिल जाना, अपनी ही गर्द सरे राह को महमिल जाना, अब जिधर देखो उधर मौत ही मंडराती। जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकला है उसे बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती, सत्य के मार्ग पर बड़े धोखे, सत्य के मार्ग पर बहुत पगडंडियां हैं जो भटका ले जाती, उनकी तरफ सचेत कर रहे हैं गोरख। जीव क्या हतियरे पेंदधारी, मारिले पंचभू मृगला, चरथारी बुद्धिवाड़ी, जो का मूल है दयादान। जीव क्या हतियरे पेंदधारी, तुम खुद ही जीव हो, तुम खुद ही शरीरधारी, क्यों दूसरे शरीरधारियों को सता रहे। तुम उन जैसे हो, वे तुम जैसे, तुम जैसे असहाय वे भी असहाय। जरा सोचो तुम में और उनमें भेद क्या है। मारले पंचभू मृगला, लेकिन लोग जाते हैं शिकार खेलने। आदमी को छोड़कर दुनिया में कोई जानवर शिकार नहीं खेलता। जानवर मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन तभी जब भूख लगी हो, भूख के लिए मारते और क्षमा के योग्य हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और पता भी नहीं कि पेट कैसे भरे, वही उनका प्रकृतिगत भोजन है। लेकिन बिना भूख के कोई जानवर नहीं मारता। सिंह के पास खरगोश बैठा रहता है, अगर भूख न लगी हो सिंह को तो कोई हर्जा नहीं, गुफ्तगु चलती, बातचीत होती, जंगल की बातें, अफवाहें, कहां क्या हो रहा है। भूख न लगी हो तो कोई अड़चन नहीं। एक आदमी अकेला ऐसा है कि बिना भूख के मारता है, खिलवाड़ में मारता है, यह हद हो गई। तुम जाते हो जंगल खिलवाड़ करने सिंह से, बंदूकें लेके, मचाने बांध के, ये भी कोई खिलवाड़ है। और सिंह अगर तुम पर हमला मार दे तो ये दुर्घटना है, और तुम अगर उसे मार लो तो ये खेल है, मृगया है। और तुम सारे साथ सामान से जाते हो और सिंह निहत्ता, और तुम दूर मचान पर बंदूकें लेके बैठे हो और सिंह के पास कोई भी आयोजन नहीं सुरक्षा का, और ये खेल चल रहा है। थोड़ा विचारो। गोरख कहते हैं अगर मारने का ही कुछ मजा है तो ये जो पंचभूतों से बनी हुई देह, इसकी गुलामी को मार डालो, इसके मालिक बन जाओ। अगर कुछ खेल का ही मजा है, अगर कुछ वीरता ही सिद्ध करनी, तो इस देह को जीत लो। मारिले पंचभू मृगला, चरथारी बुद्धिबाड़ी, या उस मन को मारो जो तुम्हारी बुद्धि की बाड़ी को चरे जाता है। लेकिन ना तो मन को मारते, ना तन को मारते, न तन को जीतते, न मन को जीतते, इनके तो तुम गुलाम बने हो। और निरीह असहाय पशुओं की हत्या करने चले जाते हो। लोग बैठे हैं घंटों मछलियां मार रहे हैं, आदमी घंटों बैठ के मछलियां मारता रहता है, इतनी देर में तो मन मार लिया जाए। और जितनी एकाग्रता से लोग मछली मारते हैं, जरा देखो, लगा के बंसी लटका के जैसा बैठते हैं एकाग्र दत्त चित्त होकर, इतने दत्त चित्त होकर अगर बैठ जाएं तो मन को जीत ले, मन की मछली को मार ले। मगर मन की मछली को मारने में उत्सुकता किसकी है, ध्यान ही नहीं। एक मछली मार लाएंगे तो बड़ी अकड़ से लौटेंगे कंधे पे लटका के उसको। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन आया, मछलियों की दुकान पर खड़ा हुआ, बाहर से ही कहा कि जरा तीन चार बड़ी बड़ी मछलियां तौल के मेरी तरफ फेंक दो। दुकानदार ने कहा फेंक दो क्या, हाथ में नहीं ले सकते। उसने कहा कि नहीं, फेंक ही दो, कि बात असल ऐसी है कि तुम तो मुझे जानते हो कि मैं झूठ बोलना कभी पसंद नहीं करता। पत्नी से जाके कहूंगा कि मछलियां पकड़ी, तुम फेंकोगे तो मैं पकड़ूंगा। झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, तो तुम जरा फेंक ही दो ताकि मैं पकड़ लूं। लोग बाजार से मछलियां खरीद लाते ये बताने को कि मछलियां मार के लौटे। मछली मारने वालों की बातें सुनी कब? कभी बैठकर? बड़ी लंतड़ांग हो जाती। दो मछली मार बैठे बात कर रहे थे, एक ने कहा आज तो हद हो गई, एक ऐसी मछली पकड़ी कि जिसके भीतर सिकंदर जिस पात्र से जल पीता था वह पात्र निकला। दूसरे ने कहा यह कुछ भी नहीं, मैंने आज एक मछली पकड़ी, जब उसको काटा तो नेपोलियन रात में जिस लालटेन को जला के पढ़ता था वो लालटेन निकली और जलती हुई। तो पहले ने कहा कि देखो भाई ऐसा करो, मैं सिकंदर का पात्र वापस लिए लेता हूं, लेकिन तुम कम से कम लालटेन बुझा दो। छोड़ो, नहीं था सिकंदर का पात्र, मगर कम से कम लालटेन बुझा दो, ये तो हद हो गई। पर लोग शिकार भी इसलिए कर रहे हैं कि वह भी अहंकार की दौड़ है। पशुओं के सामने अपने को श्रेष्ठ करने की चेष्टा चल रही है, मछलियों के सामने शर्म भी नहीं आती। श्रेष्ठ ही करना हो तो मनुष्यों के सामने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर लो, और श्रेष्ठ होने का तो एक ही उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं, कि तुम मन के मालिक हो जाओ, कि तुम अपने तन के मालिक हो जाओ, कि तुम जान लो उसे जो मन और तन के पार है। कथंथ गोरख, मुकतिले मानवा मारिले मन द्रोही। एक ही है मुक्ति का द्वार, एक ही है परम स्वतंत्रता की उपलब्धि, मार ले मन द्रोही। ये जो मन है, ये जो द्रोही मन है, इसे मार ले। द्रोही क्यों? मन नास्तिक है, समझना इसे। मन कभी आस्तिक होता ही नहीं, मन जीता ही नहीं पर है, मन का वातावरण नहीं है, नहीं मन का भोजन है। इसलिए मन हां कहने में बड़ा सा कुछ आता है, बड़ी अड़चन डालता है। अगर कभी कहना भी पड़े तो मजबूरी में हां कहता है, ना कहने में बड़ा प्रसन्न होता है, ना कहने में बड़ा आंदोलित आनंदित होता है। तुम जरा जांच करना, जब भी तुम नहीं कहने में समर्थ हो जाते हो तब मजा आ जाता, रस आ जाता। ऐसी बातों में तुम नहीं कह देते हो जिनमें नहीं कहने का कोई कारण ही नहीं था। सोचना कि क्यों तुमने नहीं कही। छोटा बच्चा है, मां से कह रहा है कि बाहर खेला हूं, नहीं, कोई कारण नहीं है नहीं कहने का। बाहर सूरज निकला है, स्वच्छ हवाएं हैं, वृक्ष हैं, पक्षी गीत गा रहे, नहीं कहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन नहीं तत्काल आती है। नौकर तनख्वाह मांगता है कि आज तनख्वाह मिल जाए, कल ले लेना, जैसे कि आज देना असंभव है। नहीं, लेकिन अभी तो नहीं कहनी ही होगी, नहीं कहने से तुम्हें बल मिलता है। इसलिए छोटा छोटा आदमी भी छोटे छोटे पद पर जो बैठा है वो भी मौका पाके नहीं करने का मौका नहीं छोड़ता। चपरासी बैठा है दफ्तर के सामने, तुम पहुंचे, साहब हैं, कहता नहीं, फिर आना। वो ये दिखलाना चाह रहा है कि समझा क्या है अपने को, हो गए लाट साहब अपने घर के, अभी लाट साहब में हूं। चपरासी भी ऐसे बोलता है, स्टेशन गए हो टिकट खरीदने, टिकट बांटने वाला क्लर्क कुछ काम भी ना हो तो रजिस्टर खोल के उलटने पलटने लगता है। वो ये कह रहा है कि खड़े रहो, ऐसे कई खड़े रहते, ऐसे तुम जैसे आते ही रहते, क्या समझ रखा है अपने आप को। ये सब बातें कही जा रही जब वो बिना कहे चुपचाप अपना रजिस्टर पलट रहा है। तुम खुद भी अपनी जांच करना, तुम भी यही करते हो। रास्ते पे खड़ा हुआ पुलिस वाला रोक देगा तुम्हें, रुको, चाहे अभी रुकने का कारण हो या ना हो, चाहे जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो। तुम आदमी के जरिए मन को पहचानो। मन जीता है नहीं पर, नहीं उसका पोषण है, नकार उसकी आत्मा है। इसलिए मन संदेह करता है, इंकार करता है, विरोध करता है। गोरख ने उसे द्रोही कहा है और वही तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे निषेध से भर देता है। और जहां निषेध है वहां अंधकार है, जहां निषेध है वहां निराशा है, जहां निषेध है वहां मृत्यु के सिवाय कभी कुछ भी न घटेगा। विदेह में होती है सुबह, विदेह में प्रकाश का जन्म है, विदेह में ही परमात्मा का अनुभव है। आस्तिकता का अर्थ होता है हां कहने की क्षमता। ये सवाल ईश्वर को ही हां कहने का नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ईश्वर को हां कह दिया आप सारी दुनिया को ना कहने के तुम हकदार हो गए। ये कोई आस्तिकता नहीं है। आस्तिक का अर्थ होता है हां जिसको सुगम हो गई, जिससे हां सरलता से बहती, जिससे ना मुश्किल हो गई। नास्तिक का अर्थ है 100 में 99 मौके पर वो नहीं कहेगा, और अगर हां कहना भी पड़ेगा तो इस ढंग से कहेगा कि उसके हां में भी नहीं का स्वर होगा, नहीं का स्वाद होगा, और जब भी मौका मिल जाएगा तो वो हां को बदल के नहीं कर देगा। फिर आस्तिक कौन है? आस्तिक वह है जो 100 में 99 मौके पर हां कहेगा, सरलता से कहेगा, सुगमता से कहेगा, बेझिझक कहेगा, बिना नानुच कहेगा, बेसर्त कहेगा, और अगर 100 बार उसे नहीं कहनी भी पड़ी तो मजबूरी में कहेगा, क्षमा मांगती हुए कहेगा, और जैसे ही अवसर आ जाएगा हां में बदलने का, वो नहीं को हां में बदल लेगा। ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है। ईश्वर को मानना न मानना गौण है, आत्मा को मानना न मानना गौण है। अगर तुमने हां कहने की क्षमता जुटा ली, तुम आत्मा को भी जान लोगे, परमात्मा को भी जान लोगे, और अगर तुम ना कहने में कुशल होते गए, निष्णात होते गए, तो आत्मा परमात्मा तो दूर, तुम जीवन को भी जानने से वंचित रह जाओगे। आकाश तारों से भरा रहेगा लेकिन तुम्हारी आंखों में अंधेरा होगा, सुबह उगेगी लेकिन तुम अंधे रहोगे, क्योंकि नहीं की परतें आदमी को अंधा करती। कोई नहीं में जी थोड़ी सकता है। नहीं का अर्थ ही होता है जो नहीं है, उसमें कैसे जियोगे? और अधिक लोग नहीं में जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवन छिन्न भिन्न है, खिन्न है, उदास है, रूखा सूखा है, रस विहीन है। उनका जीवन बस काम चलाओ जीवन है, उसमें फूल नहीं खिलते, उसमें साज नहीं बचते, उसमें रक्त नहीं होता, उसमें प्रेम नहीं पकता, उसमें प्रार्थना नहीं लगती। ये सब लगे कैसे? रसधार ही नहीं तो प्रार्थना के फल कैसे लगे? रस ही नहीं बहता, जड़ें रस ही नहीं लेती पृथ्वी से, तो फूल कैसे खिले? नृत्य कैसे हो? गान कैसे हो? जिस व्यक्ति के जीवन में हां आ जाती, उसके जीवन में काव्य आ जाता है। अब तुम फर्क समझना, नहीं है मन का स्वभाव और हां है हृदय का स्वभाव। इसलिए जो हां कहता है वह धीरे धीरे हृदय में सरक जाता है, और जो नहीं कहता है वो धीरे धीरे सिर में ही वास करने लगता है। नहीं है तर्क, नहीं है संदेह, हां है श्रद्धा, हां है भरोसा, और उस भरोसे में जीवन का प्रभात है। कथंत गोरख मुकतिले मानवा, अगर मुक्ति चाहिए हो, स्वतंत्र चाहिए हो, क्योंकि स्वतंत्रता तो सबसे बड़ी विधायकता है, मारिले मन द्रोही, तो इस द्रोही मन को, नास्तिक मन को, नकार करने वाले मन को जीत लो, मार लो। जाके बप वरण मांस नहीं लोही, और इसे मारने में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि न तो इसमें मांस है न लोहू है न देह। ये मन तो केवल एक धारणा है, इसको मारने में कोई हिंसा नहीं होगी, इसलिए गोरख कहते हैं मारो, इसको मारने में कोई हर्जा नहीं क्योंकि कोई मरेगा नहीं, ये तो केवल तुम्हारी धारणा है, तुम्हारी भ्रांति है, तुम्हारी मान्यता है। छोड़ दोगे गिर जाएगी, छोड़ दोगे बिखर जाएगी, और इसके बिखरते ही तुम मुक्त हो जाओगे। तुम उन जंजीरों में बंधे हो जो है नहीं, तुम उन कारागृहों में कैद हो जो है नहीं, लेकिन तुमने मान रखे, तुमने भरोसा कर लिया है। गुरजीएव बहुत दिनों तक कजिकिस्तान में रहा, कजिकिस्तान में अब भी ये प्रक्रिया है। छोटे बच्चों को कजिकिस्तान की स्त्रियां जंगल में काम करने जाती, खेत में काम करने जाती, तो स्त्रियों को कुछ न कुछ उपाय करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत प्रक्रिया खोज निकाली, सदियों से वहां चल रही, वो कारगर है। वो छोटे बच्चे को बिठा देती और उसके चारों तरफ खड़िया से एक लकीर खींच देती और उस बच्चे को कह देती इसके बाहर तू नहीं निकल सकेगा, कोई कभी नहीं निकल सका है। अब बचपन से ही ये बात कही जाती है और गांव भर के बच्चों को कही जाती है। सब बच्चे ये जानते हैं कि खड़िया की रेखा के बाहर नहीं निकला जा सकता, कोई बच्चा नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकते तो कैसे निकलोगे। ये सम्मोहित हो जाते हैं बच्चे, और बच्चों तक ही बात नहीं है। गुरजीएफ ने लिखा है कि तुम किसी बड़े आदमी के पास खड़िया खींच दो और वो नहीं निकलेगा। गुरजीएफ तो चौंका जब उसने देखा कि उसने कोशिश की लोगों को कि निकल आओ, हिम्मत दी कि आ जाओ मत घबराओ, वो निकलने की कोशिश भी करते हैं तो कोई अदृश्य दीवार ठीक लकीर के ऊपर खड़ी उनको वापस लौटा देती, उससे आके टकरा जाते। कोई अदृश्य दीवार जो वहां है ही नहीं, गुरजीएफ मजे से भीतर बाहर आ जा रहा है, वो देख भी रहे हैं मगर फिर भी उनके लिए है दीवार। तुमने कभी सम्मोहन का कोई खेल देखा? सम्मोहन करने वाला जो भी कह देता है सम्मोहित व्यक्ति को, वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तुम्हारा मन एक तरह का सम्मोहन है और तुम हंसना मत कि ये कजाकिस्तान के लोग ना समझ, तुम्हारी भी हालत वही है। अगर गीता को पैर लग जाए तुम जल्दी से नमस्कार करते हो। बचपन से कहा गया है कि गीता को पैर लग जाए पाप हो जाए, मुसलमान का लग जाता है उसे कोई फिक्र नहीं होती, मजा आ जाता है कि एक पुण्य का करते हुआ। तुम्हारा कुरान से पैर लग जाए तुम्हें भी कोई अड़चन नहीं होती। तुम मंदिर के सामने से निकलते तुम्हारे हाथ अपने आप जुड़ जाते, जोड़ने नहीं पड़ते, यंत्रवत। मस्जिद के सामने तुम्हें याद ही नहीं आती कि मस्जिद थी और हाथ जोड़ने थे। ये सब सम्मोहित प्रक्रियाएं हैं, ये तुम्हारे भीतर बैठ गई। मन एक तरह का सम्मोहन है नहीं, बस भरोसे में, मान लिया है तो है, छोड़ दोगे तो गिर जाए। हत्या नहीं होगी कुछ, इसलिए कहते हैं गोरख की, ऐसा मत सोच लेना कि मैं मारने धारने की बात कर रहा हूं। इसमें ना मांस है ना खून है ना जीवन है, एक थोती धारणा है। और दुनिया में अलग अलग तरह के मन है, जितनी जातियां हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, जितने समाज हैं, अलग अलग तरह का मन पैदा करते। फिर जैसा मन पैदा हो जाता है वो उसी के अनुसार चलता है, उससे भिन्न चलने में अड़चन हो जाती है, उससे भिन्न का भरोसा ही नहीं आता कि मैं चल सकता हूं। तुम अपनी ही जांच करना और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन समाज के द्वारा दिया गया एक संस्कार है और कुछ भी नहीं। तुम जिस दिन समझोगे उसी दिन गिरा सकते हो।